ओम शांति। आप सबका हार्दिक स्वागत। कर्मयोगी ग्रुप में अपने लिए तालियां जरूर बजा लें। वेंकटेश भाई, ये स्टेज की लाइट नहीं चाहिए थी। विशेष भ्राता जी ने हम सबको कर्मयोग के लिए बहुत प्रेरित किया है, और पिछले वर्ष जब हम सब ने प्रोजेक्ट लिया था, वो भी तपस्या से जुड़ा हुआ था। तपस्या वर्ष, जैसे मैंने आपको बताया था, तपस्या वर्ष था। बहुत अच्छी तपस्या की सभी भाई बहनों ने, और साथ ही प्रयोग भी किए। तो भ्राता जी का विशेष ये संकल्प था कि एक लहर फैले पूरे ही ब्राह्मण परिवार में, जिसकी चर्चा वो अपनी क्लास में भी कर रहे थे कि सभी कर्म योगी बने। क्योंकि संसार की हालातों को देखते हुए भी, साथ ही हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, जैसा बाबा हमें बनाना चाहते हैं उसके अनुरूप भी, हम सबके पास केवल एक ही चीज है, और वो है हमारा पुरुषार्थ, वो है हमारी तपस्या, हमारा योग। अब जब कभी बैठ के योग करने वाली बात आती है तो वो तो बहुत कम ही हो पाता है। हम सब जानते हैं, हम सब व्यस्त हैं बाबा की सेवाओं में भी, अपनी लौकिक जिम्मेवारियों में भी। तो बेहतरीन चीज, बेहतरीन ऑप्शन यही बचता है कि हम सब कर्म योगी बन जाएं और अपने कर्म में ही योग को शामिल कर लें। जैसे मैं 8 घंटे की बात पूछ रहा था आदरणीय भ्राता जी से, रमेश भाई जी से, तो उन्होंने कहा 24 ही घंटे क्यों ना योग किया जाए। तो सचमुच इस विषय पे तो मैंने भी नहीं सोचा था कि 24 घंटे योग हो सकता है, लेकिन एक नई चीज प्राप्त हुई, और हमारे विषय से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट ही है कि हम अब निरंतर योगी बन जाएं। तो कौन कौन निरंतर योगी बनना चाहेंगे, जरा हाथ उठा ले। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप इस ग्रुप में आए हैं तो आपकी अंदर की ये इच्छा ही है कि आप कर्म योगी बने। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल है। तो विशेष करके जो चीज हम करने जा रहे हैं, आप सब देख पा रहे हैं स्टेज की लाइट ऑफ हो सकती है। कोई है स्टेज की लाइट ऑफ करेंगे, ये वाली भैया को बोलिएगा ना। जो पीछे हैं, सामने भी आ सकते हैं, सामने आप लोग आ जाएं ताकि थोड़ी थोड़ा क्लियर रहे, यदि दिखाई ना दे रहा हो तो जितना हो सके। तो विशेष करके जैसे मैंने आपको कहा कि संकल्प भ्राता जी का ये था ही, सूर्य भाई जी का, कि हम इस विषय को लें और इस विषय को एक लहर की तरह फैलाएं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब तक हम स्वयं जिस चीज को ना करें और दूसरों को कहें, तो वो केवल थोथा ज्ञान ही होता है और उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और बाबा ने कहा है कि तुम्हें पंडित नहीं बनना है, तुम्हारी तो लाइफ ही होनी चाहिए ऐसी जिसे देख करके लोग प्रेरित हों। तो क्यों ना हम सब जो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं आज कर्म योग के लिए, इस ग्रुप के लिए, हम अपने जीवन में ही इन चीजों का एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके पश्चात प्रयोग तो साथ साथ लगा ही रहता है, और जब हम फिर दूसरों को समझाएंगे तो सचमुच वो बातें बहुत असर करेंगे। तो इस बार के लिए जो प्रोजेक्ट है, आप देख पा रहे हैं कर्मयोग का प्रोजेक्ट। दो चीजें जैसे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने की थी, दोनों साथ साथ करने का विचार है। प्रोजेक्ट गाइड के रूप में भ्राता जी हमेशा हमारे साथ साथ रहेंगे। ये स्टेज की लाइट नहीं चाहिए थी। ये सामने वाला भी बंद हो सकता है। माफ कीजिएगा, प्रेजेंटेशन मैंने हल्का बना दिया, थोड़ा डार्क बनाना था, क्योंकि अब हल्के होके उड़ना है तो इस संकल्प से ये भी हल्का ये भी हल्का हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दो चीजें साथ साथ हैं, कर्म योग और साथ ही प्रयोग, कि हम सब पहले तो जैसे हमने तपस्या की थी, वैसे ही अब हम पहले अपने कर्म में योग को शामिल करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास आजकल बहुत सारे ट्रैफिक कंट्रोल साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं। एक का शुरू होता है, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे का शुरू होता है, फिर थोड़ी देर, तो ट्रैफिक कंट्रोल का समय अब 3 मिनट ना हो के 5, 7, 10 मिनट हो। तो दोनों पे ही इस बार भी फोकस करने का हमारा विचार है, क्योंकि पुरुषार्थ तो हम करेंगे ही, लेकिन ये भी सत्य है कि हमारे साथ, हमारे परिवार में, हमारे दफ्तर में या हमारे आसपास यदि कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, तो हमारा संकल्प उधर चला ही जाता है, हम चाहें या ना चाहें। हमें यदि तकलीफ है, हम बीमार हैं और उसके बाद आप योग करते हैं, तो आप जानते हैं कि स्थिति में अंतर आ ही जाता है। तो कलयुग के अंत में ये दोनों साथ साथ हो ही गए हैं कि हम योग भी करें और साथ ही समस्याएं हैं तो उनपे प्रयोग भी करें। तो जब उस पे हमें रिजल्ट सुंदर प्राप्त होते हैं, स्वयं पे किए हुए प्रयोग के आधार पे या दूसरों के पे किए हुए प्रयोग के आधार पे, तो उससे हमारी अपनी उन्नति भी होती है और हमारा उमंग उत्साह बना रहता है। और साथ ही आज का दौर ऐसा हो गया है कि लोग इंस्टेंट कुछ चाहते हैं। यदि वो आते हैं तो आप उनको कोर्स कराने के लिए बैठे हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, अभी फिलहाल तो मुझे ना ये चीज चाहिए। आजकल आप ये देख रहे होंगे कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, तो मेरा ये डिप्रेशन थोड़ा सा ठीक हो जाए, या मुझे ये तकलीफ है ये थोड़ा ठीक हो जाए। और जैसे ही उनको थोड़ा सा प्रकाश मिलता है, हमारी योग का थोड़ा सा उनको सहयोग मिलता है, बल मिलता है, और उन्हें लगता है कि हाँ थोड़ी रिलीफ मिली है, तो एक आशा, एक विश्वास पैदा होता है जिसके आधार पे वो बाबा से जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमने इन दोनों चीजों को साथ साथ रखा है कि हम ये भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। विशेष जैसे पिछली बार भी हमने किया था, इस बार भी कर्म योग इंडिविजुअल लेवल पे भी और साथ ही ग्रुप लेवल पे भी, लोकल चैप्टर में भी आप बैठते होंगे और साथ ही साथ जहां पे भी आप हैं, मान लीजिए अभी आप अकेले आए हैं, दो हैं, तीन हैं, बहुत अच्छा होता है कि यदि हम हफ्ते में ना भी बैठ पाए तो एटलीस्ट वंस अ मंथ तो जरूर बैठें, आपस में बैठें। इंडिविजुअल एफर्ट तो हमारा चलता ही रहेगा, यदि वीकली बैठ पाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो 15 दिन में या मास में एक बार तो जरूर आप लोग मिले ही मिले। इससे क्या होता है कि हमें जो मिल रहा है, मधुबन से भी आप लोगों को सारी चीजें मिलती रहेंगी जिसके आधार पे आप लोग आपस में बात करेंगे, कुछ क्लियर नहीं है तो वो क्लियर कर पाएंगे और साथ ही अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। तो जब एक दूसरे के साथ अनुभवों को शेयर करते हैं तो वो मोटिवेशन बना रहता है। यदि मैं व्यक्तिगत करता हूं तो कई बार हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं एक दूसरे के अनुभवों को देख के। जैसे कोई 3 बजे उठ रहा है और मैं 4 बजे उठ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा साथी 3 बजे उठ रहा है तो मैं भी 3 बजे उठ करके योग करूं, राइट? तो कई बार मुझे जो नहीं मिल पा रहा है या मैं जो नहीं कर पा रहा हूं, अपने साथी को देख के भी मैं मोटिवेट होता हूं कि नहीं, मुझे भी वो चीज करनी चाहिए। जब ये कर सकता है, ये कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये आगे निकल रहा है। जैसे आज बाबा ने कॉम्पिटिशन की बात कही ना, कि ये भी एक बाबा कॉम्पिटिशन देख रहे हैं, रेस चल रही है, तो एक कॉम्पिटिशन की तरह करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो दोनों में ही, चाहे वो कर्म योग की बात है चाहे प्रयोग की बात है, प्रयोग आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं और साथ ही ग्रुप लेवल पे भी किया जा सकता है किसी एक विशेष चीज को लेकर के। आप ये देख लें, उसके पश्चात जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं, संजीव भाई भी हमारे साथ हैं जो ग्रुप को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये भी अपनी बात रखेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहा है, अंत में आप अपनी बातें रख भी सकते हैं और साथ ही कुछ विचार भी हम आपको देंगे जिन पे आप विचार करके कल भी आएंगे, जब हम कल बैठेंगे तो भी इसकी फाइनल रूपरेखा तैयार करेंगे। कर्मयोग के लिए जैसे बाबा ने विशेष बात कही हुई है कि जैसे मैंने पहले भी आपको सुनाया था कि जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही योग के बिना तुम्हारे कर्म का कोई महत्व नहीं है। बड़ी दादी जी हमेशा ये कहा करती थी, हम लोग योग भट्टी कर रहे थे, तो योग भट्टी जब चल रही थी तो वैसे दादी क्लास करा रही थी, जस्ट जैसे अभी 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो वैसे ही एक ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चला और जो योग भट्टी में सामने बैठे हुए 2-3 भाई थे, उस समय उन्हें नींद आने लगी, या जैसे नहीं हम झुक जाते हैं, नमाज पढ़ने की स्थिति बनने लगती है हमारी, कि जैसे हम अल्लाह को अब जैसे सिर झुका रहे हैं, वैसे स्थिति बन गई उनकी। अब दादी सामने बैठी हुई हैं लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हुई हो गई और वो भट्टी चल रही थी। अब जैसे ही ये ट्रैफिक कंट्रोल का गीत पूरा हुआ और दादी ने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने यही बात कही कि देखिए, हमें और संसार वालों में क्या अंतर है? हम भी वही कर्म कर रहे हैं जो संसार वाले कर रहे हैं, राइट? हम भी सुबह उठते हैं, सुबह से रात तक की अपनी दिनचर्या देख लें, आप भी जॉब करते हैं वो भी जॉब करते हैं, आप भी घर में खाना बनाते हैं वो भी, वहां की गृहणियां जो हैं वो खाना बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, कपड़े साफ करती हैं, आप भी ट्रैवलिंग करते हैं, वो सब सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे संसार वाले करते हैं। केवल एक चीज का अंतर, एक ही चीज है जो हमें संसार वालों से अलग कर देती है, हमें अल्लाह लोग बना देती है, और वो है योग। वो कर्म योगी नहीं है, आप कर्म योगी हैं। उनके कर्म उन्हें बांध रहे हैं, आपके कर्म आपको नहीं बांधेंगे। और अंतर यही आ जाता है कि हम कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन से भी मुक्त रहते हैं, और साथ ही साथ हम संसार के लिए भी वो कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। क्योंकि यदि आप खुद बंधे हुए हैं तो आप अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकते, आप संसार को जो देना चाहिए वो नहीं दे सकते हैं। तो ये दादी की एक सुंदर बात थी। तो ये यहां इस महावाक्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि योग नहीं है कर्म में तो वो कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। और साथ ही बाबा ने कहा है कि यदि याद में रह करके तुम कर्म करते हो तो वो कर्म तुम्हारा यादगार बन जाता है। तो क्यों ना हम अपने कर्म को अब यादगार बनाते चलें और साथ ही अपने कर्म में योग को भी शामिल करते चलें, क्योंकि बाबा की ये हमारे लिए विशेष विशेष प्रेरणा है। इस कर्म योग में हम क्या करने जा रहे हैं, जो आपको पूरी ही वर्ष मिलता रहेगा, उसका एक ब्रीफ जैसे पीपीटी के तौर पे मैंने तैयार किया है। आपके ख्याल में आएगा कि हम क्या क्या कर सकते, करने जा रहे हैं, और इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं वो भी आप अपने विचार देंगे। मंथली लेटर और चार्ट आप लोगों को मिलेगा। मंथली लेटर में प्राता जी हमेशा ही उनकी इच्छा रहती है कि आप सब उत्साहित रहें, मोटिवेटेड रहें, तो उसके लिए वो अपनी तरफ से ही एक पत्र भेजते हैं, तो वो पत्र आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही चार्ट मिलेगा कि पूरे ही मास हम किस प्रकार अलग अलग कर्मों में योग का अभ्यास कर सकते हैं, और हमें करना है, और हम सब सामूहिक रूप से उसे करेंगे और अपना चार्ट भी मेंटेन करेंगे। क्योंकि एक धारणा ही एक श्रीमत है, बाबा ने हम सबको एक श्रीमत दी हुई है, जैसे श्रीमत सुबह उठने की है, श्रीमत है कि हम मुरली सुने, श्रीमत है कि हम एक दूसरे के साथ मृदु व्यवहार करें, श्रीमत है कि हम योग युक्त भोजन करें, वैसे ही एक श्रीमत है जिसपे कम ध्यान रहता है हमारा, वो है चार्ट लिखना, और इसमें हम कमजोर हो जाते हैं। तो ये एक विशेष हम सबके लिए एक इस धारणा को अंडरलाइन कराने वाली चीज रहेगी कि हम मंथली चार्ट भी अपना मेंटेन करें, साथ ही वीकली ज्वेल्स आपको साप्ताहिक रूप से साप्ताहिक पुरुषार्थ के भी पॉइंट्स आपके पास भेजी जाएंगी जो आपको कर्म योग में मदद करेंगी। डेली प्रेरणा और पुरुषार्थ भी आपको भेजा जाएगा मेल के द्वारा भी। तो आप लोगों को हम एक पेपर सर्कुलेट करेंगे, ब्लैंक पेपर अभी, जिसमें आप अपना नाम, अपने सेवा केंद्र का नाम और साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको प्राप्त हुआ है वो आप लिख दीजिएगा। उसके बेस पे हम मेल के भी ग्रुप बनाएंगे और साथ ही व्हाट्सएप सर्विस भी हमारी आजकल बहुत अच्छी है, बाबा ने साइंस वालों की बहुत महिमा की है। और ये अच्छी बात है कि हम भले ही राजस्थान में बैठे हैं, आप यहाँ सुदूर कहीं से आए हुए हों, चाहे पूर्वोत्तर से आए हों, चाहे दक्षिण से आए हों, लेकिन आजकल साइंस ऐसा है कि हम सब जुड़े रह सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ईमेल यूज करते हैं, जरा हाथ उठाएंगे। ओके, थैंक यू। कितने लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं अपने मोबाइल में? ओके, शुक्रिया। तो जो नहीं करते हैं वो किसी की मदद ले सकते हैं, वैसे ज्यादातर तो मुझे लगता है 90% लोगों ने हाथ उठाया है, केवल 10% ऐसे हैं जो शायद मेल यूज नहीं करते हैं या व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने साथियों से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेंटर पे भी जो सेंटर की टीचर्स बहनें यदि यहाँ पे हैं या वो आई हुई हैं तो सेंटर के थ्रू भी आप वो प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप सर्विस ऐसी है जिसके द्वारा हम डेली ही अपनी ये जो चीजें हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डेली की कुछ प्रेरणाएं भी ऐसी बनाई जा सकती हैं और साथ ही पुरुषार्थ भी भ्राता जी विशेष करके ऑडियो क्लिप भी भेजते हैं ग्रुप में। तो हम लोग अपने इस कर्मयोगी ग्रुप के लिए भी कुछ विशेष भ्राता जी की प्रेरणा व्हाट्सएप के थ्रू भी और मेल के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मंथली फीडबैक जो क्वेश्चनर है वो भी संजीव भाई आपको क्लियर करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चनर आप लोगों को फिलअप करना है। एक है मंथ के प्रारंभ में जब आप अपना पुरुषार्थ शुरू करने जा रहे हैं तब आपकी स्थिति कैसी है, कुछ क्वेश्चनर आपके पास रहेंगे, उनका आंसर आपको देना होगा। आप खुद अपने पास ही रखिएगा उसको, और उसके पश्चात जब ये पूरे ही मास का आप अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद मंथ के एंड में आपकी कैसी स्थिति है वो भी आप खुद को देख पाएंगे, और उसका रिपोर्ट यदि आप हमें करें, हम चाहेंगे कि आप वो जरूर हम तक भेजें, क्योंकि हमेशा एक चीज मिसिंग रहती है, उस चीज को इस बार यदि न रहने दें तो अच्छा होगा कि हम रिपोर्ट जरूर करें। हमने जैसा भी पुरुषार्थ किया है, जरूरी नहीं है कि आप 100% सफल हों, जरूरी नहीं है कि आप 75% ले लें। यदि आपने पहले मास में 5% भी गेन किया है तो पिछले मास से तो अच्छा ही है ना, है ना। जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा जीतते रहें, हमारी हार भी होती है। इसीलिए इसमें स्पिरिचुअलिटी में भी और साथ ही रिसर्च में भी ये बात कही जाती है कि केवल सफलता को रिसर्च में नहीं लिया जाता, असफलता को भी रिसर्च में लिया जाता है कि आप क्यों असफल हुए हैं, राइट। जब तक आप असफलता को भी अपनी नहीं देखेंगे कि इस कारण से आप असफल हुए हैं, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए यदि आप असफल भी हुए हैं तो भी आप भेजें कि हाँ 5% ऐसा रहा है। हमेशा मैं सोचता हूँ कि हम हमेशा जीतते ही रहें, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार आपकी हार भी होती है और उस हार को हमें प्रेरणा के रूप में लेनी चाहिए। कल एक बच्ची का फोन आया, इस बीच में मैं आपको बता दूं, वो 11th क्लास में थी और जैसे उसने फोन किया वो रोने लगे। अब थोड़ी देर रोने लगी, उसके पश्चात मैंने पूछा कि आप बताओ प्रॉब्लम क्या है, तो उसने कहा कि 11th का आज ही रिजल्ट आया और मैं फेल हो गई, तो इसीलिए ना उसको बहुत रोना आ रहा था कि अब सब मुझे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, मेरे पेरेंट्स को क्या कहोगे, सब मुझे बोलेंगे ये हो गया वो हो गया। तो मैंने उसको यही बात कही कि देखो अपनी हार से भी ना एक प्रेरणा ले लेनी चाहिए कि मैं अगले साल इतनी अच्छी मेहनत करूं कि मैं टॉप करके दिखाऊं, मैं फर्स्ट क्लास आके दिखाऊं। और अभी तो आपकी एज वैसे ही कम है, निराश हो जाएंगी, हार जाएंगी, तब तो आप बिल्कुल ही बैठ जाएंगे ना, जीवन तो बहुत आगे है ना। तो थोड़ी देर फिर वो ठीक हुई। तो कहने का भाव ये है कि हार और जीत दोनों जीवन के अंग हैं, तो पुरुषार्थ में भी जब आप आगे बढ़ेंगे, चार्ट भी आप मेंटेन करेंगे, तो दोनों चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन हम दोनों चीजें आपसे चाहेंगे ऑनेस्टली आप उस चीज को हम तक पहुंचाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि कैसे हम मेजर करें, तो मेजर के लिए भी पॉइंट्स रहेंगी, संजीव भाई ने बहुत अच्छा उस पर वर्क किया है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप मेजर कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत यदि ऊपर नीचे होता है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही ये जो हमने सोचा है कि क्वार्टरली क्वेश्चन आंसर भी सूर्य भाई जी के साथ रखें, और हो सका तो हम एक मास या दो मास में भी इस चीज को कर सकते हैं, ताकि आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं प्रयोग से संबंधित हो या योग से संबंधित हो, वो भी आप हम तक पहुंचाएं। अब तक टेंटिवली ऐसा प्लान किया है कि कर्म योग के लिए भी हमने थीम रखा है कि हर मास को हम एक थीम दे करके उस थीम के अनुसार ही पुरुषार्थ करेंगे। ये आपको मिल जाएगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग के लिए जो मासिक थीम हमने सोचा है कि हम अप्रैल से शुरू करेंगे, तो पहले मास को कर्मयोग का, उसके पश्चात स्वमान पे हम फोकस करेंगे, स्पिरिचुअल ड्रिल्स हैं, बाबा के साथ जो सर्व संबंध हैं, फिर अशरीरीपन, फरिश्ता स्थिति, योग की रेस, ज्वालामुखी योग, और साथ ही फिर से हम कर्म योग तक पहुंचेंगे। इन सब में कर्म योग तो शामिल रहेगा, लेकिन स्पेशली हम फोकस करेंगे उन बातों पे, जैसे मैं कल कह रहा था ब्रदर जी से कि बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या हम करें, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो खुद एक एक चीज को यदि थीम बना लिया जाए तो मुझे लगता है कि उसकी गहराई में हम बहुत अच्छी तरह उतर पाते हैं। इसीलिए थीम रखा गया है कि एक मास के लिए, उसके आधार पे हम पुरुषार्थ करेंगे। इस पे भी आपके कुछ विचार हो तो आप हमें जरूर दे सकते हैं। कर्मयोग के जो मंथली चार्ट होंगे उसमें हम योग के चार्ट पे विशेष करके फोकस करेंगे, जिसमें कर्म योग भी होगा और साथ ही साथ हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी योग में हमें कैसे सहयोग प्रदान करें, धारणा की पॉइंट होगी और साथ ही चर्निंग होगी, जिसके आधार पे आपकी चर्निंग भी बढ़े और धारणा की बातें भी मजबूत होती चलें। और साथ ही जो हम वीकली एफर्ट देंगे उसमें भी 5 पॉइंट विशेष करके दिए जाते हैं, जिसमें स्वमान होता है, योग का अभ्यास होता है, धारणा होती है, चिंतन, और साथ ही साथ कर्म योग के लिए कुछ और विशेष आपको प्रेरणा देने वाली बातें। प्रयोग के लिए बाबा ने हमेशा कहा है, योगी तो तुम हो ही, तुमको अब प्रयोगी बनने की आवश्यकता है। इसीलिए एक कर्मयोग का पाठ और दूसरा हमारे प्रयोग का पाठ बाबा की प्रेरणा के अनुसार ही, इसीलिए प्रयोग के लिए भी हमने थीम रखा है। जैसे योग के लिए हमने मंथली थीम बनाया था, वैसे ही प्रयोग के लिए भी हमने थीम रखा है कि हम फिजिकल इलनेस को, मेंटल इलनेस को, एडिक्शन को, रिलेशनशिप में कैसे सुधार आए, स्टडीज, जॉब और बिजनेस में भी यदि कुछ अप एंड डाउन है हमारे या दूसरों के, या हमारी जो अंदर की वीकनेसेस हैं, हम अपनी किसी विशेष करके जो हमारी कमजोरी है उसे दूर करना चाहते हैं, उसके लिए भी इस योग का प्रयोग किया जा सकता है। और साथ ही डेवलपमेंट, हम किसी विशेष कला का विकास करना चाहते हैं उस पर भी हम विशेष फोकस करेंगे। तो मंथ में हमने ये थीम रख दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हरेक के सामने उस मंथ में जो थीम दिया गया है वही बात सामने आए। जरूरी नहीं है कि आप अप्रैल में बीमारी आपके सामने आए बाद में ना आए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो अदर्स हैं, जैसे कभी असफलता की बात हो गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है या कोई आपके साथ शेयर करता है, कोई एक्सीडेंट की बात है, नेचुरल कैलेमिटीज है या बाकी भी पिछले स्लाइड में जो हमने देखे हैं, ये भी यदि आप फेस कर रहे हैं या ये भी आपके आसपास है, तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि अभी हम योग का प्रयोग कैसे और किस पे करें, क्योंकि वर्तमान में किस चीज की मुझे ज्यादा आवश्यकता है। थीम हम ले रहे हैं, लेकिन यदि उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूसरी चीजों को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही एक विशेष विचार भी है कि हम क्यों ना हम योग का एक ऐसा प्रयोग बैंक भी बनाएं कि मतलब जो भी हम योग कर रहे हैं 10 मिनट का विशेष समय या 5 मिनट का विशेष समय, इस पे भी आप अपने विचार दीजिएगा कि हम सब सामूहिक रूप से किसी विशेष चीज के लिए भी हम योग करें, जिसको बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा की बात हो सकती है, सारे संसार के लिए हो सकती है। तो ये भी एक प्रयोग बैंक का एक विचार है, इस पे भी आपके कुछ विचार हो तो आप दे सकते हैं। और मोटिवेशन के लिए हमने सोचा है कि जैसे वैसे भी हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करते ही हैं, पिछले 2-3 वर्षों से हम ये कर रहे हैं, लेकिन इस बार स्पार्क में भी ये करने का विचार है। पिछली बार भी ये विचार था, लेकिन इस बार विशेष करके ये विचार है कि जैसे कर्मयोगी ऑफ द मंथ और कर्मयोगी ऑफ द ईयर ऐसा हम घोषित करें। मोटिवेशन के तौर पे ये है, वैसे तो आप सब बहुत अच्छे कर्मयोगी हैं और कर्मयोग पे बहुत अच्छा आपका ध्यान रहेगा, लेकिन क्यों ना एक कंपटीशन का, एक पॉजिटिव रेस का रूप इसे दिया जाए कि मैं सबसे अच्छा करूं, मैं सबसे आगे आऊं, नंबर 1 मैं बनूं, फर्स्ट मैं आऊं। तो ये एक मोटिवेशन के तौर पे कि कर्म, हम लोग जो चार्ट भेजेंगे आपको, वो चार्ट जो आप फिलअप करके भेजेंगे, तो यदि आप चार्ट हमारा 28 डेज का होता है, पहली तारीख से लेकर 28 तारीख तक होता है, यदि आप 29th को या 30th को भी, 29th ही मैं कहूंगा, अपना चार्ट यदि हमें भेज देते हैं, उस बेस पे हम ये अनाउंस कर पाएंगे, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा चाहे मेल के द्वारा, कि इस मंथ का कर्मयोगी ऑफ द मंथ कौन था या प्रयोगी ऑफ द मंथ कौन था। आपने जो प्रयोग किए हों अच्छे से अच्छे, उस मंथ का जो थीम है उस पे, या फिर कुछ और, तो वो फिर हम जो भाई साहब लेटर भेजेंगे सभी को उसमें भी मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाए जाएंगे या ईमेल का जो हमारे पास ग्रुप होगा उसमें भी अनाउंस किया जाएगा। खुश हैं इससे, संतुष्ट हैं इससे, एग्रीड हैं? जरा हाथ उठा के थैंक यू, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और जब सामूहिक रूप से इतने सारे लोग करेंगे तो हमें ये पता भी चलता है कि किसके योग का चार्ट कैसा है, कितना है, और साथ ही कौन कौन सा प्रयोग कर रहा है और क्या रिजल्ट मिल रही है। तो इससे मोटिवेशन तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ हमें बल भी मिलता है कि हम भी करें और हम कर सकते हैं। तो ये एक विशेष चीज इस बार ऐड किया है हमने अपने ग्रुप के लिए। तो कौन बनना चाहेगा कर्मयोगी ऑफ द ईयर? अच्छा सर, सारे ही, तो ये अच्छी बात है। मुझे ये चाहिए था कि हम सबके अंदर एक जोश हो, उमंग हो, उत्साह हो कि मैं ये बन के दिखाऊंगा, और साथ ही प्रयोगी ऑफ द ईयर। इसके लिए भी विशेष विचार है कि हम कुछ ट्रॉफी जैसा बनाए या कुछ गिफ्ट जरूर हो जो आप लोगों को दिया जाए मोटिवेशन के तौर पे। वैसे तो बाबा रोज रोज ही हमें देते हैं, लेकिन फिर भी ये विशेष करके इस बार के लिए विचार है। साथ ही एक ईमेल आईडी क्रिएट किया गया है, spark.karmayog@gmail.com। इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, जो भी चीजें आप लोगों तक पहुंचेंगी इस ग्रुप के द्वारा जाएगी। आपके पास भी जो मन में प्रश्न हो, बातें हो, वो आप इसमें पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, या यदि आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और साथ ही व्हाट्सएप के द्वारा हम, जैसे मैंने कहा कि हम आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ पॉइंट्स भेजते रहेंगे, वो भी आपको कर्मयोग के लिए प्रेरित करेंगे और साथ ही प्रयोग में भी आपको मदद करेंगे। और व्हाट्सएप के थ्रू भी यदि आप ग्रुप में भी कुछ, यदि आप बातें पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, उसके लिए भी हम कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। ये आपने नोट कर लिया, spark.karmayog@gmail.com, सिंपल सा है, spark.karmayog@gmail.com। उसके बाद जो आपके सजेशन है उस पोर्शन पे, तो खैर मैं बाद में आऊंगा संजीव भाई के बाद, लेकिन सिंपल है, जैसे भाई साहब ने भी हमें कार्य दिया था उसके आधार पे कुछ होमवर्क देने का विचार है। लास्ट में मैं आप लोगों के सामने ये रखूंगा कि हम कैसे अपने आप को ये विचार दे सकते हैं और कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विचार होंगे, मैं चाहूंगा कि लिखित में वो विचार जरूर हम तक पहुंचा दें, लेकिन विभिन्न विभिन्न जो हमारे कर्म है सुबह से लेकर रात तक, उन विभिन्न कर्मों में हम किस प्रकार के योग के अभ्यास कर सकते हैं यदि आप ये निकाल सकें, साथ ही किस किस एरिया में प्रयोग किया जा सकता है और प्रयोग की विधि क्या हो सकती है यदि आप इस पे चर्न कर सकें, ये सब के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी जो आपके विचार हों वो भी आप जरूर देंगे, लास्ट में भी मैं इस विषय पे आऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये विशेष करके एक मोटे मोटे तौर पे विचार है पूरे ही हमारे वर्ष के लिए जो हम करने जा रहे हैं। अभी मैं संजीव भाई को आमंत्रित करूंगा कि उन्होंने जो विचार किया है, ये हमारा विचार था कि इसे हम ये प्रयोग जो हम कर रहे हैं और साथ ही जो अभ्यास करेंगे वो पोर्शन था, लेकिन अब हमें एनालाइज क्या करना है, क्या क्या देखना है, किस प्रकार अपनी चेकिंग करनी है, उस पोर्शन को संजीव भाई कवर करेंगे।
ओम शांति। अभी हम स्पार्क में आए हैं तो पुरुषार्थ तो एक बहुत बड़ा लॉटरी है स्पार्क में, तो सबको पता है, रूपेश भाई जी ने भी अभी बताया बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या है स्पार्क और पुरुषार्थ में, मतलब नॉर्मल पुरुषार्थ में थोड़ा सा अंतर है। स्पार्क का पुरुषार्थ जो होता है वो एक इंटेलेक्चुअल पुरुषार्थ होता है, माना सिस्टमेटिक प्रोसीजर, रिजल्ट ओरिएंटेड, और उसका जो प्राप्ति होता है उसको रिपीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि स्पार्क में जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उसको फल नहीं मिलता है, उनको भी फल मिलता है। जो स्पार्क के बाहर हैं हमारे भाई बहने, तो वो भी जब पुरुषार्थ करते हैं उनको भी फल मिलता है, लेकिन वो एक रैंडम होता है। जिसका ज्यादा भावना होता है उसको ज्यादा फल मिलता है, लेकिन स्पार्क के थ्रू हम क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक सभी करते हैं। तो सिस्टमेटिक में क्या होता है, जैसे बाबा ने बताया कि विधि से सिद्धि होता है, तो उसमें हमको कौन कौन सा एफर्ट करने से क्या क्या प्राप्ति होता है हम उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं, और वो रिजल्ट को हम दूसरे कोई चाहे तो उसी टाइप का प्रयोग करके उसका रिजल्ट रिपीट कर सकता है, जो बाहर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी ये प्रोजेक्ट में हमने कर्मयोग की ऊपर बात किए हैं, तो कर्मयोग की बुक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे
एक मिनट, आप लोगों को वो पेपर मिला जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है?
हाँ, अभी सर्कुलेट में चार पेपर एक साथ अच्छा, दिया हूँ।
थोड़े से और पेपर की जरूरत होगी शायद पीछे के लिए भी, तो दो चार पेपर, ज्ञानेश्वर भाई आप थोड़ा सा दो चार पेपर और रेडी कर देंगे,
स्पेयर पेपर
पीछे सर्कुलेट कर दें, क्योंकि यही एक समय होता है जबकि आपकी डिटेल्स हमें मिल सकती हैं, क्योंकि यदि आपके मेल आईडी नाम हमें नहीं मिल पाएंगे तो फिर ग्रुप में हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। हाँ नहीं, केवल आपको
रजिस्ट्रेशन नंबर में सब
रजिस्ट्रेशन नंबर में तो सारी चीजें हैं। जी जी, नाम
अच्छा, स्पार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो स्पार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, उसमें सब कुछ हमको मिल जाएगा। जो जिनका नहीं है, याद नहीं है, तो वो अपना डिटेल भरना पड़ेगा, कम से कम ईमेल आईडी और फोन नंबर दीजिए, बाकी है ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें।
और फोन नंबर भी, जो व्हाट्सएप आप जिसमें यूज करते हो वो आप फोन नंबर डालें तो बहुत बेहतर होगा
आपका। अगर मल्टीपल फोन नंबर थे जिसमें आप व्हाट्सएप यूज करते हैं वही प्लीज दीजिए।
ठीक, हाँ, अब आप ध्यान भी देंगे, आपके पास पेपर आता रहेगा, आप कंप्लीट कर लेंगे उसको भी और ध्यान भी देंगे यहाँ। जी
ठीक है, आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, मिल जाएगा सबको पेपर, प्लीज बैठिए अपने जगह पे। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो कर्मयोग है जो हम, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है क्योंकि हमारा पुरुषार्थ, हमारे पास 63 जन्मों की फिसला कर्मों का बोझ है, और हमारे पास इतने सारे जन्मों के बाद हमारे जो संस्कार भी खराब हो चुके हैं, तो इसके ऊपर हमें वो सब नेगेटिव से जीरो से लाके न्यूट्रल में लाके फिर पॉजिटिव में जाना है। कर्मयोग जो माना कर्म संबंध, सत्युग में जैसे कर्म संबंध होता है, अभी उसी स्टेज में जाना है। कर्मयोग की मतलब नहीं कि पुराना कर्म हिसाब किताब चुक्त हो, या हमारे पास कोई विकर्म ना हो। कर्मयोग का मतलब ये होता है कि हम कर्म से आनंद ले, जिससे हम जो सतयुगी संस्कार बोलते हैं ना, उसका उदय हो। क्योंकि अचानक हमको शरीर छोड़ने वाले हैं तो उसी संस्कार को लेके जाएंगे ना। तो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको हमने दो फेज में डिवाइड किए हैं। जो पहला फेज पर जैसे रूपेश भाई अभी बता रहे थे, जो पुरुषार्थ की पॉइंट वो सब हम फॉलो करेंगे। वो पॉइंट जितने जाते आते रहेंगे, जो भी समान आएंगे, जो भी गुण, जो भी शक्तियां की प्रैक्टिस आएगी, वो सब करेंगे। लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेज वन में सिर्फ स्वयं के लिए फोकस करेंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो पूरा 100% स्वयं के, क्योंकि जब हम स्वयं जब अकेले रहते हैं तभी अगर हम कर्मयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी दो व्यक्तियों की संस्कार एक जैसा नहीं होता है, तो हम दूसरों के साथ आते हुए कर्मयोग कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए पहले स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए, पहले स्वयं जब कोई बाहर की व्यक्ति से हमारा कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी व्यक्ति से, अगर उसी टाइम हम योग को परफेक्ट, कर्मयोग को परफेक्ट करेंगे, फिर फेज टू में देखेंगे कैसे। उसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ बंद करेंगे, पुरुषार्थ जैसे प्रयोग आता रहेगा वो करते रहेंगे, लेकिन फोकस इस तरफ रहेगा। क्योंकि ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि सभी यहाँ पर जो आए हुए हैं, सभी यहाँ पे, यहाँ से जाने वाले, यहाँ तो फुल टाइम रहते हैं, लेकिन यहाँ से जाने वाले में, जाने के बाद ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि बहुत काम में बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए उनको जो प्रैक्टिस होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो बहुत तकलीफ होता है। इसलिए बहुत सिंपल कर दिए हैं इस बार। प्रैक्टिस तो रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन जो रहेगा, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ओनली वंस इन ए वीक, दो बार आपको मंथली दो बार बस भरना है, ताकि आप संडे संडे निकाल के, सैटरडे या संडे निकाल के आधा से एक घंटा स्पेंड करेंगे तो चार्ट भर सकते हैं। वो जब हम, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये बहुत सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये क्या होता है कि सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक होने से हमारा क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, हम सबको ज्ञान पता है लेकिन हमारा अटेंशन की कमी के कारण हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। जब हम अटेंशन में लाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो ज्ञान तो हम रेली सुनते हैं, बाबा का मुरली सुनते हैं, धारणा क्लास सुनते हैं, कुछ अलौकिक आर्टिकल भाई बहनों का, दादियों का आर्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है वो सब थ्योरी के हिसाब से बुद्धि में रहता है, वो प्रैक्टिकल नहीं आता है, क्योंकि हम उस पर अटेंशन देके पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो इसलिए जो स्वयं के ऊपर अटेंशन देने के लिए इस फेज में पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ के लिए हम 10 महीने रखे हैं। 10 महीने के को 10 मॉड्यूल में डिवाइड किए हैं। वो मॉड्यूल आपको दिखाता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर होता जाएगा। जब पहला मॉड्यूल होगा ऑब्जर्विंग सेल्फ, तो इसमें क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा वर्तमान की स्थिति कैसा है। अभी हमारे पास सब ज्ञान है कि क्या क्या गुण है, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या समान है, क्या क्या 16 कला संपूर्ण में, क्या क्या 16 कला है या वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होता है, हम अपने को डिफाइन नहीं करते हैं। जब हमारा बाउंड्री को डिफाइन नहीं करते हैं तो बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। हम हमेशा सोचेंगे कि मैं समान का प्रैक्टिस कर दिया, माना मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, थोड़ा सा मैं 5 मिनट प्रैक्टिस कर दिया, माना मैंने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को प्राप्त कर लिया। ऐसे नहीं, उसका प्रैक्टिस अलग है, लेकिन हमारा जो स्टेज है, जो ओवरऑल स्टेज है, वो हमको जानना जरूरी है। तो पहले मंथ में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्विंग सेल्फ रहेगा, तो उसमें हमें ये चीजों का ध्यान रखेंगे कि हमारा स्पीड का, थॉट का स्पीड कैसा है, हमारा जो जितना थॉट चलते हैं एवरेज कितना नेगेटिव, कितना पॉजिटिव, कितना न्यूट्रल, कितना वेस्ट चलता है। हम अपना जब नेगेटिव थॉट चलता है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, और एवरेज कितना समय याद में रहते हैं, और कितना गहराई में याद में रहते हैं, हमको कौन कौन से थॉट बार बार हमको तंग करते हैं। हम पुरुषार्थ करने के लिए योग में बैठते हैं तो योग, बाबा से योग करने के बजाय वो बातें बुद्धि में आता है, तो कौन कौन सा थॉट है, और फिर एक लौकिक के स्वार्ट माना स्ट्रेंथ वीकनेस, ये सब चीजें आपको मिलेगा। किस आप ध्यान से सुनिए, जो भी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है सब आपको मिलेगा। तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, तो मेरा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, और मेरे लिए कौन कौन सा चीजें डेंजर है, जिस पर ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा पुरुषार्थ लाइफ डेंजर। ये सब पॉइंट्स को पहला मंथ में फुल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अपने को जैसे उसके लिए क्वेश्चनार भी तैयार किया गया है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये बहुत सिंपल है, जैसे कैसा थॉट आपका, स्लो, नॉर्मल, हाई स्पीड, कंट्रोल किए बिना। जब एक बार गुस्सा आ जाता है, किसी के गलत बातें याद आ जाता है, तो बहुत जोर से व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली कितना परसेंटेज, क्योंकि मेजरमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि सभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सभी रिसर्च नहीं है, रिसर्च करने में इतना फैमिलियर नहीं है, तो इसलिए इस साल की जो मेजरमेंट ज्यादातर परसेंटेज में रखा गया है, ताकि आपको इजी होता है मेजर करने के लिए। आप अपने हिसाब से जो हाईएस्ट है तो उसको 100% सोच के अपने हिसाब से उसका कितना परसेंटेज होता है उसको थोड़ा सा परसेंटेज तो सबको इजी है ना मेजर करना, तो इसलिए सिर्फ परसेंटेज रखें, ज्यादा मल्टीपल लेवल्स नहीं रखें, ताकि आप लोगों को इजी हो। इसलिए टोटल जितने चार्ट बने हैं सो परसेंटेज के आधार पर रखे हैं। जैसे आप जब वेस्ट थॉट आता है कैसे कंट्रोल करते हो, सोमान प्रैक्टिस करते हो, या आत्माभिमानी बनने की कोशिश करते हो, बाबा को याद करते हो, या अपने आप को समझाने की कोशिश करते हो, जो भी आप इन जनरल करते हो प्लीज आप उसको लिखिए। सिमिलरली कौन सा टाइप का थॉट आपको ट्रबल करता है, इसका भी चार्ट। ये मेरा स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस, ये मेरा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सब कैसे रहेगा, ये आपको ये इसको क्या करना है, मंथ की पहले जब पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं एक बार फिलअप करना है, फिर टोटल मंथ में ये सब चीजों की जब एनालिसिस करते हैं, देखिए आप अटेंशन रखेंगे ना तो बहुत सारे चीजों की ऑटोमेटिकली आप अपना पुरुषार्थ की मिनिमम लेवल में पहुंच जाएंगे। क्या होता है, हमारा कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन बिकॉज ऑफ अटेंशन की हमारा जो मिनिमम कैपेबिलिटी है तो उसमें भी नहीं पहुंचते हैं, फिर बिघ्न में उलझते रहते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, फिर लौकिक टाइप का हमारा थॉट प्रोसेस हो जाता है। तो ये मंथ अपने ऊपर अटेंशन देना है, तो अटेंशन देने से ही कितना इम्प्रूव होता है ये सेकंड टाइम जब सेम चीज फिलअप करेंगे तभी पता पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, सेकंड जो मंथ आता है उसमें स्वयं को पुरुषार्थ के ट्रैक में लाने की कर सकते हैं, मैंने कैसे एक्चुअल पुरुषार्थ हमारा मिनिमम लेवल में पहुंच के फिर कैसे प्रैक्टिकल पुरुषार्थ, माना पुरुषार्थ माना ऐसे नहीं कि जैसे कल रमेश भाई जी ने बता रहे थे कि 24 आवर्स याद में रहना है, 24 आवर्स याद में रहना का नहीं है, का मतलब नहीं है कि बाबा बाबा होते रहे, हमारा पुरुषार्थ जो बाबा के श्रीमत अनुसार 24 आवर्स चलता रहे, एक भी सेकंड के गैप नहीं हो। तो उसके लिए माइंड को कैसे बिजी रखना है, जो पुरुषार्थ के क्या क्या एस्पेक्ट्स पर हमको ध्यान देना है, ये तो हमने कुछ अपने हिसाब से बनाए हैं, इसमें भी आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो ये इस मंथ में हम ध्यान देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग और एनहांसिंग ऑफ द सेल्फ, आप अपने को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो फर्स्ट मंथ में हो जाता है, फिर सेकंड मंथ में अपने को अंडरस्टैंड करना है, उसको इम्प्रूव करना है, जो पॉजिटिव है उसको इम्प्रूव करना है, जो नेगेटिव है उसको अपने को समझा समझा के उसको दूर करना है, फिर अपने आप को स्वमान के हिसाब से डिफाइन करना है, कौन कौन से स्वमान का लायक मैं हूँ, कौन कौन सा डिवाइन वर्च्यूज का लायक मैं हूँ, मेरे अंदर कौन कौन से कला है, मेरे अंदर कौन कौन सा शक्ति है, ये सब अपने आप को देखना है और उसको जितना हो से उसको थोड़ा बढ़ाते जाना है। फिर हमारा देखना है कि हमारा मुरली सुनते वक्त बुद्धि बाबा से सरेंडर रही या नहीं है, और रोज की जैसे कल सूरज भाई जी समझा रहे थे, रोज अपना दिनचर्या फिक्स करना है। दिनचर्या किसी इन जनरल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हर एक का वर्कलोड, वर्क स्ट्रक्चर सब अलग है, तो इसलिए अपने को सूट करने जैसा दिनचर्या मेंटेन करना है और उसको कंपल्सरली फॉलो करना है, ठीक है। और एक एक थॉट, जब हम ज्ञान में चलते हैं माना हमारा क्या है, ज्ञान में आगे माना हमारा नया जन्म, नया जन्म माना क्या है, हम ईश्वर के भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो ये कोई साधारण जन्म नहीं है, बाबा का नजर हमारा एक एक थॉट पर है, लेकिन हम अपने थॉट को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाबा हमारे एक एक थॉट पर ध्यान देते हैं, तो हमें भी अपना थॉट को एक एक थॉट को ध्यान देंगे तभी हम प्रॉपर पुरुषार्थ कर सकेंगे, नहीं तो 100 थॉट को पॉजिटिव, फिर एक बहुत नेगेटिव थॉट आता है बीच में जो 100 पॉजिटिव थॉट का जो इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, तो इसलिए हर एक थॉट की गार्ड करना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने को माफ करना है, जैसे हम पिछले जन्म में अपने को माफ करने का मतलब है अपना पुराना मिस्टेक रिपीट नहीं करना है और जो पिछली बात है भूल जाना है, और लाइफ को जैसे आता है उसको एक्सेप्ट करना है, जो सब मेरे पुरुषार्थ के लिए ड्रामा कल्याणकारी है ये सब एक्सेप्ट करना है, और उसके बेसिस पर एक क्वेश्चनर बनाया गया है, इसको आपको हर हफ्ता भरना है ताकि अटेंशन रहे। इसको डेली भरने की जरूरत नहीं और इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर तीसरा मंथ आता है जो पुरुषार्थ हम शुरू किए हैं ना, तो उसके अंदर क्वालिटी लानी है, ब्रिंगिंग क्वालिटी इन द पुरुषार्थ। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आता है, वो चेकिंग पॉइंट्स आता है, ये सब आ जाता है कि हम जब किसके आधार से हम क्वालिटी बढ़ाएंगे। जैसे ज्ञान का चरणिंग करना शुरू करेंगे, मुरली को बार बार पढ़ेंगे, जब भी हमको चांस मिले बाबा, कोई बोलते हैं 8 घंटा चाहिए, कोई 4 घंटा, कोई बोलते हैं हम बाबा को याद नहीं कर पाते, याद लगाना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक टेंडेंसी नहीं है, जब भी टाइम मिले, माइंड में जस्ट ट्रैफिक जाम है, रुका हुआ है, लौकिक लोग गाली कर रहे हैं लोगों को, ट्रैफिक को, गवर्नमेंट को, रोड को, अलग अलग गाली कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है ट्रैफिक जाम में फंसे हुए बाबा को याद करना है, चांस मिला। तो इसी तरह जब भी टाइम मिले, जब हम डेली कार्य कर रहे होंगे तभी माइंड फ्री रहता है, तभी बाबा को याद करना है, फाइन टाइम, कभी भी टाइम मिलता है हमारे पास, हमेशा एक टेंडेंसी रहना चाहिए कि बाबा को याद करें। तो ये एक पुरुषार्थ में ज्यादा तीव्रता लाएगा। तापर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डिवाइन वर्च्यूज, जो स्वयं से रिलेटेड, कुछ डिवाइन वर्च्यूज ऐसे होते हैं जो स्वयं से रिलेटेड होते हैं, कुछ डिवाइन वर्च्यूज ऐसे होते हैं जो दूसरों से रिलेटेड होते हैं। जैसे हर्षित मुक्ता, वो स्वयं से रिलेटेड होता है, और जैसे सहनशीलता, उसमें वो दूसरों से रिलेटेड होता है। तो इस जो फेज है इसमें स्वयं से रिलेटेड जितने डिवाइन वर्च्यूज है और कला है और स्पिरिचुअल पावर से वो यूज करना है। सहन शक्ति किसके लिए चाहिए, जब दूसरे कोई गलत करे तभी सहन करना पड़ता है ना, तो ये सब पर ध्यान नहीं देना है, जो स्वयं से रिलेटेड है सिर्फ उस पर फोकस करना है। जब दूसरों से रिलेटेड नेक्स्ट फेज में हम ध्यान देंगे। फाइंड बेनिफिट, जब हम बार बार कोई बात हमको पास्ट हमको सता रहा है, बार बार याद आ रहा है, माना उसके साथ हमारा कुछ कड़वा यादें जुड़ी हुई है, तो उससे क्या कल्याण है वो ढूंढना है, वो चिंतन मंथन करना है। तो बाबा ने हमको क्या बोला है कि निंदा हमारा जो करे मित्र हमारा सो, माना हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, तो इसलिए सबको सकास देना है, चाहे मित्र है चाहे दुश्मन है। तो जो बाबा की ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बाबा ने जो स्वरूप बनाए हैं क्वालिटी, स्पिरिचुअल क्वालिटीज का, उसका स्वरूप बनते जाना है। ये भी, इसके लिए भी हमारा चार्ट बना हुआ है, ताकि वो आपको ध्यान रहे जो परसेंटेज हमारा इम्प्रूव होना चाहिए। फिर चौथा मंथ में एम्पावरिंग, अभी इम्प्रूव होने के बाद क्या एम्पावरमेंट होता है, जो आत्मा के अंदर शक्तियां निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे दूसरों को फील होता है, तो उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज का चांस नहीं, तो परसेंटेज का चांस नहीं रहता है उसमें, सब में 100% बनना होता है। जैसे पहले हम अपने को फॉरगिव, दूसरे को फॉरगिव करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें इस मंथ में हम अपने को 100% फॉरगिव कर देंगे, क्षमा कर देंगे, दूसरों को 100% क्षमा कर देंगे, सबके लिए हमारा गुड फीलिंग्स रहेगा, अंतर्मुख बन जाएंगे, जितने सारे सोमान जो प्रैक्टिस होते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल इमेज कंटिन्यूअसली रहना। सोमान होता है क्या, सोचिए इस मंथ में हमको होली हंस का सोमान मिला है, तो होली हंस का थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करना नहीं है, कंटिन्यूअसली जो हमको देख के दूसरों को ये होली हंस से ऐसे फीलिंग आना चाहिए, तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। सिर्फ इसको एक होता है प्रैक्टिस करना है, इस एक है योग का प्रैक्टिस करना है, एक है योगी जीवन बिताना है। तो योग की प्रैक्टिस से हम स्विच ओवर करेंगे योगी जीवन, हमको देख के बताने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर को ये होते हैं, लौकिक में डॉक्टर भी होते हैं, तो उनको देख के वो आते ही पेशेंट को अच्छा लगता है, तो हमें भी ऐसे स्पिरिचुअल डॉक्टर से हमको देखते के भी सबको अपना दुख कष्ट मिट जाना चाहिए, इस टाइप की स्टेज बनाना है। तो इसके लिए ये पॉइंट सब कलेक्ट किए हैं, ठीक है। अच्छा, समय की कमी के कारण मैं अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूँ, नेक्स्ट अगले मंथ में क्या क्या करेंगे। हमने कुछ पॉइंट तो इकट्ठा किए हैं, उसके बाद आप लोगों से भी इनपुट लेंगे, इससे क्या ऐड हो सकता है या कि इसमें क्या मॉडिफाई हो सकता है, जब हम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो वो आ जाएगा। अभी पांचवी मंथ में जब हम स्वयं को एम्पावर कर दिए, उसके बाद जैसे पहला मंथ हमने यूज किया था अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, इसी तरह हम पांचवी मंथ यूज करेंगे अंडरस्टैंडिंग गॉड। अंडरस्टैंडिंग गॉड का ये मतलब नहीं कि जो हम सुने हैं बाबा की क्वालिटी उसको बारे में सोचे, अंडरस्टैंडिंग का गॉड मतलब बाबा की कौन कौन से क्वालिटी मैंने प्रैक्टिकली रियलाइज किया है, क्योंकि हम यूज वही कर सकते हैं बाबा की क्वालिटी जो हमने खुद रियलाइज किया है। तो अपने समझ के हिसाब से बाबा को डिफाइन करेंगे, फिर दूसरों से भी डिस्कशन करेंगे कि बाबा की क्वालिटी और क्या क्या हो सकता है, ये महीन बात है। तो वो प्रैक्टिकल जितना हम लाएंगे तो वो उतना हम प्रैक्टिकल जितना रियलाइजेशन करेंगे बाबा की पर्सनैलिटी, उतना हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। जो छठी महीना आएगा उसमें हम क्या करेंगे, भिन्न भिन्न मेथड यूज करेंगे बाबा से कैसे क्लोज हुए। क्योंकि तमेव माता से पिता तमेव तो मुंह से बोल देते हैं भक्ति मार्ग वाले भी, लेकिन हम बाबा से जब सर्व संबंध जोड़ते हैं तो हम कहाँ तक लायक है कौन से संबंध के, तो वो एनालिसिस करके उसमें जो कमी है वो भर के उसके जो क्वालिटीज है उसको अपने अंदर समा के फिर बाबा से हम क्लोज हो सकते हैं। तो क्लोज होने के लिए क्या क्या मेथड चाहिए वो इसी मंथ में अप्लाई करेंगे। फिर जो सातवां महीना आएगा उसमें बाबा को कैसे हम कांस्टेंट कंपेनियन बना सकते हैं। हम बोलते हैं ना, कंप्लेन करते हैं माया आ गया, ये हो गया, विघ्न आ गया। जब हम बाबा के साथ रहेंगे तो कोई भी विघ्न चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ना ही डर होगा, ना ही उसको सामना करने की कोई हिचकिचाहट होगी, और चाहे विघ्न के अंदर भी हम मुस्कुराते रहेंगे। तो जैसे गुलाब कांटों के अंदर मुस्कुराता रहता है, खिलता रहता है, इसी तरह दुनिया कांटे हैं फिर भी हम उसके अंदर मुस्कुराते तभी रहेंगे जब भी हम बाबा को अपना साथी बना देंगे। फिर जब आठवीं महीना आएगा, जब हम बाबा को, हाँ जी, अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है, अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसलिए गैप हो रहा है, मंथ 8 माना नवम्बर दिखा रहा है। तो फिर जब हम बाबा से सर्व कंपेनियन की रूप में अनुभव कर सकेंगे, फिर हमारा जो योग का प्रयोग कर्म के ऊपर करेंगे तभी देखेंगे कितना प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। तो कर्म के ऊपर बाबा को प्रयोग करने से पहले हमको 7 मंथ की प्रैक्टिस, 7 मंथ की सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसके बाद हम प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो किन किन बातों में ऑलरेडी कल भाई जी ने बताया था, सूरज भाई जी ने बताया था, उसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स ऐड किए हैं और भी ऐड हो सकते हैं, तो क्या क्या चीजों पर ध्यान रखेंगे ताकि हम कंटिन्यूअसली कर्म योग पर रह सकते हैं, कर्म की योग पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जो 9th मंथ आएगा, ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा जैसे कंफर्टेबल लाइफ चल रहा था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कंफर्ट जोन से बाहर जाने का ये पुरुषार्थ है। हम कर्म योग के अप्लाई विपरीत परिस्थिति में, जैसे अभी रुपेश भाई बोल रहे थे, जो जब बीमारी होता है या नेचुरल कैलामिटी होता है या कोई भी विघ्न आता है, जब कोई भी नेगेटिव चीज होता है उसके सामने भी हमारा कर्मयोग ऐसे ही चलता रहे। कर्मयोग ऐसा नहीं कि जब परिस्थिति पॉजिटिव हो हम कर्मयोग करेंगे, जब परिस्थिति नेगेटिव हो जाएगा तो बोलेंगे हमारा योग टूट जाता है, उसका मतलब हमारा कर्मयोग पक्का नहीं है। कर्मयोग पक्का है, हम अपने को सर्टिफाई तब कर सकते हैं जब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो हमारा योग बाबा से जुड़ा रहे, ठीक है ना। क्योंकि विनाश के टाइम ऐसे थोड़ी आएगा कि हमारे लिए विनाश के टाइम सब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, बाकियों के लिए विनाश होगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस अभी शुरू करना है, तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स रखे हैं, चेकिंग पॉइंट्स जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हम उसका हम चार्ट रखेंगे। जब 10th मंथ जो लास्ट मंथ रहे, इसमें आएगा कि मास्टरिंग कर्म योगा इन ऑल सिचुएशंस, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए उसमें हम एक आदर्श की तरह कैसे रह सकते हैं, ये इसमें जब परफेक्शन लाएंगे तो हम अपने को प्रॉपर कर्मयोगी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये पूरा 10 महीने की टोटल प्लानिंग है पुरुषार्थ का, चार्ट का। इसको हम जितना फिलअप करेंगे उतना हम सिस्टमेटिक काम कर सकते हैं। रुपेश भाई जो बता रहे थे अभी उनके प्रेजेंटेशन में, वो पुरुषार्थ चलता रहेगा लेकिन फोकस इस पर रहेगा, अटेंशन जो चार्ट रहेगा तो अप्लाई इस पर होगा, वो प्रैक्टिस होगा, एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। तो ताकि हम चार्ट भर सके, उसको बार बार भेज सके, उसका रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि स्पार्क में रिसर्च होता है, रिसर्च का क्या स्पेशलिटी है, उसका रिपीट कर सकते हैं। जैसे बाहर में कोई आते हैं, आप इतना पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाइए, तो रिपोर्ट देख के हमारे हमको कितना स्ट्रांग रिसर्च है उनका उतना रिस्पेक्ट होता है। और हम पुरुषार्थ करेंगे उसका रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट क्यों ना हो। जैसे ज्ञान में जब से शुरू हुआ है तब से वर्कशॉप की सिस्टम चला है, ज्ञान सब कुछ भाई बहन मिलके ज्ञान रिसर्च, ज्ञान के ऊपर कुछ चिंतन मंथन करेंगे, वो भी एक टाइप का रिसर्च है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो जैसे टेम्पररली उनको बेनिफिट मिला, बाकी सारे यज्ञों को, सारे परिवार को, सबको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो लेकिन हम स्पार्क में जो भी करते हैं पुरुषार्थ, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसका प्रॉपरली सिस्टमेटिकली उसको फिलअप करेंगे। जैसे अभी रूपेश भाई बता रहे थे कि फेलियर भी हो तो भी उसको रिपोर्ट करना है, ताकि हमको पता पड़े कि क्यों फेलियर हुए है? अगर सक्सेस भी होता है, अच्छी तरह सक्सेस होता है, वो भी रिपोर्टिंग करना पड़े, ताकि हमें पता पड़े कि सक्सेस क्यों होता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन ने जब बनाए थे, तो थ्योरी उनके दिमाग में था, जो प्रैक्टिकल में आए 250 बार फेलियर हुए, और उसके बाद ही उनको सक्सेस मिला। तो किसी ने, उनके साथी ने बोला, तो आपका तो फेलियर 250 टाइम्स है और सक्सेस एक है, तो उसका मतलब आपको 0.4% आपको सक्सेस मिला है। तो उन्होंने बोले, नहीं, मुझे 100% सक्सेस मिला है, क्योंकि दुनिया में मैं एक ही व्यक्ति हूँ जिसको पता है कि 200 टाइप 50 टाइप कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ना बनाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमको सफलता भी मिले तो उसको भी लिखना है, लेकिन क्या करने से रॉन्ग एप्लीकेशन। बाबा भी मुरली में, अव्यक्त मुरली में देखेंगे कि बाबा बोलते हैं कि बच्चे रॉन्ग पावर का यूज करते हैं, माना समाने की शक्ति के जगह सामना करने की शक्ति, सामना करने के टाइम समाने की शक्ति। वो बोलेंगे तो मैं तो अप्लाई किया था स्पिरिचुअल पावर, लेकिन गलत अप्लाई किया तो रिजल्ट नहीं मिलता है। जहां सहन करना है वहां सामना करते हैं, जहां सामना करना है वहां सहन करते हैं, तो रिजल्ट जब नेगेटिव होता है तो उनको कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो लेकिन रिसर्च में ये चीजें सब क्लियर हो जाएगा कि हम अपने, क्या होता है कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं जो सोचता हूँ वो राइट है, तो इसलिए वैसी को अप्लाई करते हैं, लेकिन जब फेलियर होता है तो मूंझ जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में ऐसा नहीं, पुरुषार्थ माना क्या है, हमारा गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, उसमें जो भी होता है उसमें सक्सेस ही होता है, क्योंकि फेलियर जो होता है, सोचिए आपका पॉकेट से पिक पॉकेट होके 100 रुपया चोरी हो गया, आप बोलेंगे उसमें कल्याणकारी क्या है, मेरा पॉकेट से 100 रुपया चोरी हो गया। लेकिन क्या होता है कि जब 100 रुपया चोरी होता है आप अलर्ट होते हैं, नेक्स्ट टाइम आपका पॉकेट में 1000 रुपया होता है, लेकिन आप अलर्ट के कारण बचा देते हैं, तो उस टाइम उसका वैल्यू पता पड़ता है। अगर आप 100 रुपया चोरी नहीं होता है तो बाद में 1000 रुपया आपका चोरी हो जाता है, क्योंकि आप अलर्ट नहीं थे। तो इसलिए हर एक ड्रामा में जो नेगेटिव होता है उसका कल्याणकारी होता है, तो उसका कल्याण समझने में ही हमारा भलाई है, हमारा पुरुषार्थ वही होता है। और हर एक चीज को ब्लेम करने से या लौकिक टाइप के दूसरों को दोष देने से टेम्पररी तो आनंद मिल सकता है, लेकिन हम अपने को पुरुषार्थी नहीं कर सकते। पुरुषार्थी माना जो भी चारों तरफ मेरा हो रहा है सबके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो जो भी संबंधी है वो सब मेरे साथ हिसाब किताब चुक्त करना है। तो ये सब चीजें जब बुद्धि में, ऐसे तो पुरुषार्थ बहुत सारी बातें हैं, जितना बोलेंगे कम है। तो अभी मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ग्रुप में डिवाइड करके बात करेंगे।
थैंक यू संजीव भाई, आपने बहुत सारी बातें और क्रम से रखी हैं, हो सकता है कईयों को कुछ क्लियर ना भी हुआ हो, लेकिन ये दिन प्रतिदिन ये क्लियर होता चला जाएगा और आपको वो सारी चीजें मिल भी जाएंगी। और ऐसा भी जरूरी नहीं है, कई बार मैं समझता हूँ हर प्रकार के हैं हमारे ग्रुप में, तो कई बार हमें लगता है कि इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें, हल्के रहें, इजीली जितना आप कर सकते हैं वो आप कीजिएगा, लेकिन लक्ष्य ये हो अपने पुरुषार्थ को हमें बहुत अच्छा करना है, योग बहुत अच्छा करना है। तो जो चीजें हम ले सकते हैं, कई बार मैं सोचता हूँ कि हम जब बिग बाजार में जाते हैं तो सारा बिग बाजार उठा करके नहीं ले आते, राइट? हमें जो चीजें चाहिए होती हैं, अच्छी लगती हैं, वो चीजें हम लेते हैं। तो यदि आपको लगता है कि सारी चीजें नहीं भी हो पाएंगी, कितनी हो पाएंगी कितनी नहीं हो पाएंगी, ये बहुत अच्छा है कि हम उसको डॉक्यूमेंट करें, लिखें, सबमिट करें, लेकिन इनकेस यदि नहीं भी हो पाता है आपसे, तो भी जितना आप लाभ ले सकते हैं जरूर लेंगे। एक मिनट हम सब बहुत अच्छे से अपने गहराई में अपने अंदर चलें और जो आपने अभी सुना है उसको अपने अंदर रिवाइज कर लें, और जो आपके मन में विचार आ रहा है, हमारे पास 5 मिनट है, 10 मिनट हम लोग शेयर करेंगे, आपके पास माइक होगा, आप शेयर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले सबने अपने नाम आदि लिख दिए पेपर में, कोई बचा हुआ है? अच्छा, पीछे नहीं गया है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको। एक मिनट बहुत अच्छे से अपने अंदर चलेंगे, साइलेंस, देखें जो भी हमने सुना, जो विचार आ रहा है बाबा की ओर से, उसे अपने मन में लाएंगे। एक मिनट पूरी तरह साइलेंस। ओम शांति।
किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ
सकते हैं जी। अब आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं ब्रीफ में, आपको जो विचार आया हो सुनते हुए, या इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास कुछ विचार हो। वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को, मैं लास्ट में बताऊंगा अभी कि आप लोग कुछ होमवर्क भी कर लें, लेकिन अभी जो इंस्टेंटली आपके मन में विचार आया हो। बहने भाई, माइक सामने रखा हुआ है, आप लोग आ सकते हैं लेफ्ट साइड में। आइए 10 मिनट शेयर कर लें, उसके पश्चात फिर आप लोगों को भोजन पे भी जाना है। लास्टली मैं, मेरे पास कुछ विचार थे, वो होमवर्क के रूप में आप लोग कर सकते हैं अभी जाने के बाद भी। किसी को कुछ विचार है भाइयों में? ये माइक इधर है, लेफ्ट साइड में माइक है, यहाँ आ जाए जी। जिनको भी अपने विचार देने हैं, अब आप लाइट जला सकते हैं, यहाँ का ये माइक दीजिएगा। ओके ओके, ऑडियंस वाला माइक देंगे, आप ये ले लीजिए।
एक बात मैं बताना भूल गया, एक्चुअली जो राजयोग होता है उसका हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं। इसमें किसी किसी को क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ फैमिली इलनेस रहता है, और किसी को कुछ क्रॉनिक इलनेस होता है, तो उसमें कुछ डिविएशन हो सकता है, क्योंकि इन जनरल जो प्रयोग करते हैं उसमें उनका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब आप हमारे पास कम्युनिकेशन करेंगे तो ये इसमें से अगर कुछ आपको है, आपका कुछ हिस्ट्री ऑफ फैमिली इलनेस है या कुछ क्रॉनिक इलनेस है, डिप्रेशन या ऐसे, तो प्लीज आप वो मेंशन करना ना भूले, कि ताकि हम उसको अलग टाइप के डाटाबेस में एंट्री करेंगे। ओम शांति।
और एक आपको सबको एक निवेदन करना है कि अभी जैसे हमने पेपर मूव किया है, पिछले साल हमारा एक्सपीरियंस ऐसे था कि कभी ईमेल आईडी गलत लिख देते हैं, कभी मोबाइल नंबर ठीक तरह से एक डिजिट नहीं होता, और फिर हम लोग आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं हो गए हैं बाय चांस, तो आप संजीव भाई का नंबर जो है और या मेरा नंबर आप लिख लीजिए अपने नोटबुक पे, तो आप पता कर सकते हैं कि मेरा नंबर क्यों नहीं ऐड हो गया। अगर नहीं हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संजीव भाई आपका नंबर जरा बताएंगे आपको। और दूसरा मेल आईडी जो मेल लिख सकते हैं वो मेल आईडी जरूर एक बार नोट करिए, मेल आईडी भी लिख लीजिए आप।
एक मिनट, मैं बोलने में किसी को सुनने में कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं काम करता हूँ टाइप ही कर देता हूँ,
टाइप कर
ताकि आपको सभी। मेरा फोन नंबर ये है 9449067400। ईमेल आईडी भी लिख देता हूँ। हाँ स्पार्क, नहीं वो तो ग्रुप का है, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी। तो किसी को कुछ डाउट है तो इसमें, ये मेरा फोन नंबर है, इसमें व्हाट्सएप भी है, तो आप स्पार्क प्रोजेक्ट का ऊपर में कर्मयोग प्रोजेक्ट लिख के फिर बाद में आप जो भी बातें रख सकते हैं। तो रुपेश भाई का भी इसमें सभी का पास होगा, फिर भी बहुतों का पास नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, लिख दीजिए पहले।
ओम शांति। जो अभी भाई जी ने जितना भी प्रेजेंटेशन किया उसमें, जैसे आप क्योंकि ये रिसर्च है तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपने परसेंटेज ऑफ थॉट बताया ना, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस चीज को जो क्वांटिफाई करना है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव चीज है, और जब उसका क्वांटिफिकेशन हमें करना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
नहीं नहीं, मैं आप देखेंगे कि मैंने वो पूछा था, वो परसेंटेज में आपका जितना थॉट आता है उसमें पॉजिटिव कितना परसेंट है, नेगेटिव कितना है, न्यूट्रल कितना है और वेस्ट कितना है, वो क्वालिटेटिव में नहीं जाता है, क्वांटिटेटिव में ही रहता है। आई डिडंट गो इनटू क्वालिटी।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब मुझे मेजर करना है कि पूरे दिन में मुझे कितना पॉजिटिव थॉट आया, कितना नेगेटिव थॉट आया, कितना वेस्ट आया है, और कितना नेसेसरी आया, तो ये अपने आप में ये क्वालिटेटिव डेटा है।
नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये एक हफ्ते में भरने का है तो पर दिन में देख सकते हैं, आज मेरा आधा दिन पॉजिटिव थॉट गया, मैंने 50% हो गया, आज दिन मुझे तो 4 घंटा ऐसे, मैंने ये क्या होता है, मैं क्या बोलता हूँ, आप इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देख के उसका इंटेंशन देखिए। इंटेंशन क्या होता है, जब हम परसेंटेज के बारे में सोचते हैं तो उसमें बुद्धि में आ जाता है कि आज मैंने मेरा आधा दिन वेस्ट थॉट में चला गया, सो वेस्ट थॉट में 50% जाएगा, और पॉजिटिव थॉट 25% रहा, और साधारण थॉट अनदर 25% रहा। तो उसमें क्या होता है ना कि ये बेसिकली परसेंटेज इसीलिए रखा जाता है ताकि अटेंशन रहे, कि टुमारो आई विल कीप अटेंशन कि नहीं मैं थोड़ा सा टाइम तो पॉजिटिव में अटेंशन रखूं। ये थोड़ा अटेंशन पुरुषार्थ के लिए रखा गया है परसेंटेज, ये क्वांटिटेटिव ज्यादा बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव नहीं रखे हैं, उसका लेबल नहीं रखे हैं कि कितना पॉजिटिव का लेबल रहा नेगेटिव। इन जनरल आपके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखना है, तो इसलिए इसको तकलीफ नहीं होगा मुझे मेरे हिसाब से।
आप थोड़ा इस तरीके का कुछ टिप दे देंगे, अदरवाइज जो है जैसे एक तो इसमें सेल्फ एनालिसिस में एक तो जो है कि
हाँ, उसका क्या होता है ना, उसका पुरुषार्थ में उसका वैल्यू समझिए कि कुछ तो वैल्यू आप अपने हिसाब से जो वैल्यू समझते हैं ना वो लिखिए, उसमें दूसरों का मेजरमेंट से कितना होगा वो आप मत सोचिए, क्योंकि इसको रिफाइन करेंगे उसको थोड़ा क्लैरिटी दे देंगे ग्रुप में जब हम, क्योंकि क्या होता है आज 1 hour 15 minutes कल 1.5 hour इतना ही टाइम मिला है, तो ग्रुप वर्किंग के लिए सफिशियंट नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, हम इन्फॉर्मेशन एक नॉटशेल में दे रहे हैं, बाकी जो क्लैरिटी वो फ्यूचर में आपको देते रहेंगे, या आप अभी आप बहन जी पूछे तो मैं बता दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है ना हर एक का अपने का दिमाग में जैसे शांति, मेरे हिसाब से 100% जो शांति वो आपके हिसाब से शांति नहीं होगा, तो मैं अपने हिसाब से 100% अचीव करूं तो मैं 100% लिखूं, आपके हिसाब से वो 50% हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% है ना, तो इसलिए जो खुद का परसेप्शन है वही लिखना है, बाकी दूसरों से इसलिए ये क्या ये फेज कंप्लीटली सेल्फ के लिए रखे गए हैं ताकि थोड़ा सा फैमिलियरिटी हो जाए अपने आप से, तो इसमें दूसरों का क्या कोई भी रिलेशन, क्योंकि फेज वन कंप्लीटली रखे हैं सेल्फ के लिए, इसलिए जो भी आपको ठीक लगे उतना लिखना है, क्योंकि आप जो लिखेंगे आप खुद ही उसके ऊपर इंप्रूव करेंगे, तो परसेंटेज बढ़ाने का मतलब यही है कि हर हफ्ता क्यों लिखने के लिए बोला गया है, क्योंकि आप जो लिखेंगे आप उसके ऊपर अटेंशन देके उसका परसेंटेज बढ़ाएंगे
जी।
ठीक है,
और दूसरी चीज ये थी क्योंकि बाबा का ज्ञान इज अबाउट बहुत सूक्ष्म चेकिंग, बहुत सूक्ष्म में जाके चेक करना है, तो जैसे जो पिछले साल चार्ट आए थे जैसे फॉर एग्जांपल योग का था कि 1 घंटा योग किया तो इतने मार्क्स या 2 घंटा योग किया तो इतने मार्क्स, बट विद इन दैट 1 hour उस समय आपका योग किस प्रकार का हुआ, यदि उस पे कुछ ऐसा चार्ट डेवलप हो सकता है तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल।
आपका कौन सा वाला फोन दे दूं?
ओम शांति।
कौन सा वाला फोन?
भाई जी मैं चाहती हूँ कि 5-5 लोगों का 6-6 लोगों का ग्रुप बनाया जाए एरिया वाइज, जैसा बैंगलोर के है महाराष्ट्र के है और ऐसे है, उसमें एक लीडर और एक सब यानी जूनियर लीडर हो जो अपडेट देता रहे, जैसा बाबा मुरली में कहते हैं कि योगी बनो और बनाओ, तो उसमें लीडर और जूनियर लीडर जो होगा दूसरों को बाबा याद है या नहीं जैसा वो याद दिलाए, बस उतना रिक्वेस्ट, थैंक यू।
ये एक्चुअली जब ग्रुप में आएंगे तो सभी अपना मत दे सकते हैं, बाकी कुछ भाई बहनों अगर चाहते हैं जहां पर लोकल चैप्टर है वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं, या कुछ लोकली ग्रुप बना के जो फिजिकली मिल सकते हैं आपस में कम से कम मंथली एक बार मिल के थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो अच्छा है, जैसे जहां पे लोकल चैप्टर है वहां उनको रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोकल चैप्टर में जरूर ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कराएं ताकि उसका जो रिजल्ट है वो बेटर हो सके, क्योंकि संगठित ग्रुप में पुरुषार्थ करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन रहता है। माइक पास में रखिए थोड़ा, ठीक है मैं सभी माइक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मुंह के पास रखिए।
कर्मयोगी फर्स्ट प्राइज और प्रयोगी फर्स्ट प्राइज, दैट वन हाउ डू यू जज, ऑन व्हाट बेसिस यू विल जज, बिकॉज
दैट वी विल डिसाइड, दैट भाई जी विल डिसाइड,
बिकॉज यस्टरडे व्हेन यू आस्क क्वेश्चन टू रमेश भाई जी नो फॉर एग्जांपल यू आस्क हाउ टू मेक अमृत वेला पावरफुल, देन दैट ड्यूरिंग दैट क्वेश्चन टाइम रमेश भाई जी ऑल्सो ही रिमेम्बर्ड हिज अर्ली डेज, एंड वेन बाबा आस्क्ड to a group of people who all got up at Amrit Vela, then there was a couple, one of them husband told that I got up, and his wife only suddenly she told he didn't get up, so on what perspective, like his perspective was 4 o'clock Amrit Vela at Mauritius, likewise on what perspective will judge that, on what basis that is perspective of mind, on what angle we will be thinking, it will be different for each and every one.
Surya bhai ji hamare project guide hain, ye hum sab ka bahut bada saubhagya hai, in sabhi vishayon pe hum unse charcha karenge, aur kuch
what purushas will be doing, it is for the self, I am becoming better to myself than the previous I'm not comparing with anybody, because everybody's circumstance, everything, it will be fully different.
Mm-hmm.
You cannot give medal, that will be a deeper analysis.
मोटिवेशन के तौर पे है, और सेकेंडली हम इसके लिए कुछ ऐसी क्राइटेरिया जरूर रखेंगे जिससे कि कम से कम क्लेरिटी आ जाए कि हाँ कौन इसका है. जस्ट मोटिवेशन के तौर पे ये रखा गया है, इसको ऐसा ना लें, ये तो ऐसा ना लें, व्यक्तिगत रूप से हरेक को ये पुरुषार्थ करना है, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन होता है तो बहुत अच्छा.
हम अज्यूम करेंगे कि जो बता बोल रहा है वो सच बोल रहा है, उतना तो
आई विल बी ऑनेस्ट टू माय माइसेल्फ.
कोई झूठ बोलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते.
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर ऑनेस्टी.
रिसर्च मींस ऑन दैट ओनली, नो, इट शुड बी ट्रू थीसिस व्हाटएवर यू आर डूइंग.
अभी जस्ट ये विचार आया है, विचार ही आप लोगों के सामने रखे हैं, बाकी आप सबके जैसे विचार आएंगे उसके आधार पर ये सब चीजें फाइनलाइज होंगी. थैंक यू वेरी मच. और भी कोई? सबने अपने भर दिए हैं. अभी कहां तक नहीं आया? पीछे पीछे ज्ञानेश्वर पीछे नहीं पेपर पहुंचा है.
आइए आइए सामने आके बताइए भाई जी.
हाँ जी बोलिए.
ओम शांति. संजय भाई जी ने हर एक मंथ की थीम दी है और रुपेश भाई जी ने भी हर एक मंथ की थीम दी है, तो क्या वो दोनों थीम में सिमिलैरिटी है या फिर
नहीं,
दोनों थोड़ी अलग अलग?
नहीं, ये अलग एस्पेक्ट है. ये आपको लॉजिकल एस्पेक्ट है, वो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है. माना लॉजिकल एस्पेक्ट में जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में जो खास जहां पे प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे रुपेश भाई बताएं. मैं बोला कहां प्रयोग करेंगे, मैं बताया क्या प्रयोग करेंगे, रुपेश भाई का पार्ट आएगा. जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो बताया गया कि क्या क्या प्रयोग करेंगे, क्या क्या फील्ड पर प्रयोग करेंगे, कौन कौन से फील्ड पर. उसमें
मंथली जो चीज आपके पास जाएगी ना लेटर या चार्ट के रूप में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है. इसीलिए मैंने कहा कि अभी ये वर्कआउट हम लोग कर ही रहे हैं, वैसे प्लानिंग तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को एक दूसरे के साथ मिला करके फिर आप लोगों के सामने जब मंथली हम ये मेल के थ्रू भेजेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा. मेल तो सभी एक्सेस करते ही है ना, मेल के थ्रू ही आप लोगों को सब मिलेगा, तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा मेल ही होगा. जी आई. हाँ जी
ठीक है, मेल आईडी वही है.
हाँ जी मेल आईडी यही, बाबा है फिर मैं हूँ और फिर जी मेल.
हाँ जी, इसको जो बोलना है सामने प्लीज.
हाँ अभी भी है, 5 मिनट में आप पूरा करें, फिर उसके बाद हम पूरा करेंगे. अच्छा जब तक कोई आता है, किसी को आना है तो आप सामने आ जाएं.
व्हाट्सएप भी है,
सामने आ सकते हैं.
ये नंबर पे व्हाट्सएप भी है.
अभी आपने जो भी सुना है, अभी भी विचार आपको आ रहे होंगे, सबके विचार तो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी कोई आना चाहता है तो आ सकता है. लेकिन जो भी आपने सुना कि हम जो कर्मयोगी इस स्थिति के लिए प्रयोग के लिए जो भी करना चाहते हैं, चाहे हमने थीम लिया है, चाहे जो भी दूसरे हमारे पार्ट हैं, उस पर जो भी आपको विचार आ रहा है वो आप जरूर दें. लेकिन विशेष करके दो चीजों पर आप विचार करें. जैसे अभी बहन आई थी तो कह रही थी छोटा छोटा ग्रुप बनाएं. कल हम लोग ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अपने विचारों को शेयर कर सकें. उसमें से विशेष करके यदि आप ये कर सकें, भ्राता जी भी जैसे हम लोगों को दे रहे थे, कि कौन कौन से कर्म हैं सुबह से लेकर रात तक जो हम करते हैं, उन कर्मों में क्या क्या अभ्यास किया जा सकता है, यदि आप ये थोड़ा विचार कर लें आज भी और कल सुबह भी, तो जब ग्रुप में डिस्कशन होगा तो आप बिल्कुल ताजे ताजे नहीं बैठे होंगे, एक विचार के साथ बैठे होंगे. कर्म हम निकाल लें, क्योंकि बहुत ही सिंपली हम लोगों को आगे बढ़ना है तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं तो कई बार थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन सिंपली आप शुरू तो करेंगे और ये सब इजी होता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे. तो ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, कर्मों के प्रकार आप जरूर सोच लें सुबह से लेकर रात तक जो हम करते हैं, और साथ ही उसमें क्या क्या अभ्यास किए जा सकते हैं. जी
बहुत सारे भाई बहनों का अभी तक मेल आईडी फोन नंबर लिखा नहीं है. मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं, आपको सेंटर का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है. दूसरा, आपको खाली मेल आईडी लिखनी है, नाम लिखना है, गांव का, जो अगर कोई चेन्नई का है कोई इंदौर का है ऐसे लिखो, बाकी एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है. आपको फोन नंबर ईमेल आईडी चाहिए. बाय चांस किसी ने अगर लिखा है कुछ गड़बड़ हो गई नहीं लिख पाए, तो ये अभी जो नंबर लिखे हैं रुपेश भाई और संजीव भाई का, वो व्हाट्सएप नंबर ही है. मोबाइल नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर ही है, उस व्हाट्सएप पे आप बता सकते हो आपका मेल आईडी और ये. और रुपेश भाई उनका मेन क्वेश्चन ये था कि जो मटेरियल आप भेजेंगे वो इंग्लिश में भेजेंगे या हिंदी में भेजेंगे. बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि वो हिंदी में भेजेंगे तो समझ में आएगा.
कितने लोग हिंदी में चाहते हैं? थैंक यू. और कितने इंग्लिश वाले हैं? अच्छा इंग्लिश वाले भी हैं, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि यदि पॉसिबल हुआ तो दोनों ही करके भेजे जाएं आप लोगों को, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जिनको हिंदी चाहिए वो हिंदी यूज कर लेंगे और इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश यूज कर लेंगे। कितने ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही हिंदी समझ में नहीं आती है, बिल्कुल ही, एक भी नहीं है, मतलब हिंदी में पूरा भेजा जा सकता है। ठीक है, तो हिंदी को हम प्राथमिकता देंगे।
फॉरेन का एक भाई है।
हाँ, फॉरेन के बस एक भाई हैं, तो ठीक है वो होगा, हम दोनों ही साथ साथ भेजेंगे, लेकिन हिंदी तो है ही क्योंकि वो सतयुगी भाषा है और हम सबके लिए भी इजी है, तो हम लोग आसानी से ये कर सकते हैं, ठीक है। जी 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 जी, ओके। तो मैं जो विशेष चीज कह रहा था, जो आप लोगों को चिंतन करना है, विचार करना है, वो ये कि यही विभिन्न कर्म और उस कर्म के साथ क्या क्या योग के अभ्यास हुए किए जा सकते हैं। इतने सारे स्पार्कलर्स हैं तो अच्छे विचार निकल के आ जाएंगे। और दूसरी बात, जो एरिया हमने लिए हैं प्रयोग के, कि यहां यहां हमें प्रयोग करना है, तो प्रयोग की क्या विधि रखी जा सकती है, इस पे आप जरूर विचार करें। सिंपली हम इस प्रकार से रखते हैं कि सिचुएशन क्या है, समस्या क्या है, समस्या के बाद उसमें क्या क्या आप देखते हैं कि उस समस्या के कारण क्या क्या हो रहा है, उसमें क्या स्वमान लिया जा सकता है, किस प्रकार योग का अभ्यास किया जा सकता है, उसकी क्या विधि अपनाई जा सकती है और क्या हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस फ्रेम में आप सोच सकते हैं, या इससे अलग भी आपको कुछ विचार आता है तो अलग अलग जो सिचुएशन है जिन पे हमें प्रयोग करना है, कैसे हम योग का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी विधि क्या हो सकती है, इस पे आप विचार कर लें। और तीसरी विशेष करके जो बात थी वो ये, जो थीम लिए गए हैं पूरे ही मंथ के लिए, उस पर भी कोई विचार आपका आ रहा हो कि ये चीज और इंक्लूड की जा सकती है या इस चीज को और शामिल किया जा सकता है, तो वो चीज भी हम अप्रिशिएट करेंगे। तो ये तीन विशेष चीजें हैं जिसके ऊपर आप विचार कर लीजिएगा, कल जब ग्रुप बनेंगे उस पर भी आप विचार करेंगे और कल फिर हम इन सब चीजों को मिला करके अपना प्रपोजल भी रेडी कर लेंगे और सब चीजों को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। रेडी, और किसी को कुछ कहना है?
कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल सकते हैं क्या, एक्स्ट्रा टाइम कुछ होता है
क्या, आपको लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम निकाला जा सकता है? वैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ और चीजें हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन शेड्यूल इतना टाइट है सुबह से लेकर रात तक का कि थोड़ा सा लगता है कि और कहीं से आपका समय चुराना थोड़ा मुश्किल लगता है, कि आपको भी थोड़ा भारी लगेगा जी। 15 तारीख तक कौन कौन है? 15 तारीख तक, अच्छा ज्यादातर लोग आप लोग 15 तारीख तक हैं। अच्छा 14-15 सुबह कौन जा रहा है, सुबह सुबह? अच्छा सुबह भी कुछ लोग जा रहे हैं।
नहीं, लंच तक है ना सभी? अच्छा लंच नहीं, तक नहीं, कम से
तो
कम।
ओके, आज आप ये कर लें, यदि कल ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो हम एक थोड़ा सा वक्त आप लोगों का आधे घंटे का चुराना चाहेंगे, 3-4 हो सकता है, बाकी फिर भी आप लोग आज इस पे सब अच्छे से विचार कर लें। कल जैसा रहा तो हम लोग सुबह का सत्र यदि पूरा नहीं कर पाते हैं तो 3-4 लेकर के उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए तो तैयार है ना, ताकि सब कुछ कंप्लीट करके जाएं, ताकि किसी का कोई क्वेश्चन ना रहे, सारी चीजें क्लियर हो जाएं और उसके पश्चात वहां जाकर के आप लोग अपना प्रयोग शुरू कर सकें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप सभी कर्मयोगी बाबा की याद में बैठेंगे और उसके पश्चात योग युक्त होकर, मुझे विचार आ रहा था कि कर्मयोगी ग्रुप वाले कर्मयोगी बन करके ही चलें, है ना, बाबा को साथ लेकर के चलें, ताकि देख करके लोग कहें कि आप कर्मयोगी ग्रुप में हैं, राइट, उन्हें देख के ऐसा लगना चाहिए। चलें तो बाबा को याद करें और बाबा को साथ लेकर के ही भोजन पे जाएंगे और भोजन भी बहुत बाबा की याद में शांति में ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।